प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है,
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
ओम शांति। मुझे मालूम है इस समय की क्लास सुनने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए और कराने वाले को भी कुछ ताकत चाहिए। दोनों तरफ ताकत का काम चलेगा, क्योंकि अनाज भी कुछ तो नशा चढ़ाता ही है, और वो नशा कोई बोलने का उछलने का नहीं होता, डंप हो जाने का होता है। और मैं देखती हूँ बहुत सारे उस नशे के प्रभाव में आ चुके हुए। थोड़ा स्वयं को सावधान करना पड़ेगा। वैसे तो भट्ठी के दरमियान आपको दो रोटी की भूख हो तो डेढ़ रोटी से चला लें, काम तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन समझते हैं दलिया भी बना है, तो चपाती भी बनी है, तो सब्जी भी बनी है, कुछ और भी है, तो छोड़े किस चीज को। सभी भगवान जी के यज्ञ में स्वीकार कर ही लिया जाए तो ठीक है। और वो जो सब स्वीकार हो जाता है उसका परिणाम क्लास में दिखाई देता है कि कितना स्वीकार हो चुका है। तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। मैं इस पर एक बात आपको सुनाकर फिर क्लास शुरू करती हूँ। मैं कई बार ये बात सुनाती भी हूँ, क्योंकि पहले समय था जब भोग लगता था, शुरू शुरू यज्ञ की स्थापना जब सेवा प्रारंभ हुई तो भोग का समय 12 बजे ही होता था, और 12 बजे भोग स्वीकार कराया जाता था। सभी ऑफिस से भी बहुत छुट्टी लेकर आते थे, माताएं भी घर का काम निपटा कर आती थी। विशेष संदेशी का ये नियम होता था कि बिना खाए पिए वो आएगी, बाकी सब नाश्ता थोड़ा हैवी कर लेते थे, क्योंकि मालूम है कि 3-4 तो भोग में बजे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मिनट में भोग, 2 रिकॉर्ड बजे भोग लग गया, लेकिन भोग बड़े आराम से लगता था। संदेशी संदेश लेकर जाती है, संदेश लेकर आती है, कभी पुनः संदेश लेकर फिर जाती है, फिर वापस आती है। बहुत अच्छी रौनक रमणीकता चलती थी। तो एक बार संदेशी जब भोग लेकर गई तो बाबा ने भोग स्वीकार करने के पश्चात बड़े प्यार से कहा कि बच्ची, आज मेरे सब क्लास में सोने वाले आलस वाले बच्चों को बहुत याद प्यार देना। तो संदेशी चुप हो गई कि जिन्होंने भोग लगाया, जिन्होंने बाबा को याद किया, अलर्ट होके बैठे, आज उनको कुछ नहीं कहना, सोने वालों को, सुस्ती में रहने वालों को मेरी बहुत बहुत याद प्यार देना। तो संदेशी बाबा कैसे मुख देखने लगी, तो बाबा समझ तो जाते ही हैं। बाबा ने फौरन कहा कि बच्ची, जो बच्चे सचेत होकर बैठे, समझते हैं हमने भोग लगाया है या सावधान है या बाबा की याद में बैठे हैं, वो याद दे भी रहे हैं और याद का बल ले भी रहे हैं। लेकिन जो बच्चे निद्रा में हैं या सुस्ती में बैठे हैं, वो ना याद दे रहे हैं ना याद ले रहे हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को जाकर मेरा याद प्यार जरूर दे देना। तो अभी ऐसा नहीं कि आप समझो बैठे बिठाए याद प्यार मिल जाएगा, सो भी लें और याद भी मिल जाए। देखिए, मैं इसलिए सुना रही हूँ कि बाबा की मेहनत फालतू नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा ख्याल रखेंगे, क्योंकि आज का विषय बहुत सुंदर है। और बाबा ने जिन रत्नों को चुना है वो भी देखें तो हम सबको बाबा ने चुना कैसे। हम गाथाएं सुनते थे कि अलाउद्दीन अल्लाह अबुद्दीन की लालटेन ऐसी लालटेन थी, जो भी उसमें मनोकामना कोई भी करे उसकी सब इच्छाएं वो पूर्ण कर देती। और एक बार उनकी लालटेन गुम हो गई, और गुम होने पर काफी परेशानी आई कि मेरी लालटेन कहाँ गई। लेकिन किसी ने, कहते हैं, सजेशन दिया कि अगर आपको अपनी पुरानी लालटेन ढूंढनी है तो उसका एक ही तरीका है कि किसी के हाथ में नई लालटेन डाल दो और उसको कहो कि गली गली कूचे कूचे ये आवाज लगाए कि पुरानी लालटेन दे दो, नई लालटेन ले लो, पुरानी लालटेन दे दो, नई लालटेन ले लो। और जब ऐसी आवाज लगी तो एक बच्चा था, उसने देखा हमारे घर पुरानी लालटेन है, तो जल्दी से जल्दी पुरानी लालटेन दे आया और नई लालटेन ले आया। वो जो अल्लाह अव्वल दिन की लालटेन गुम हो चुकी थी पुरानी, वो उसे मिल गई। और सचमुच बाबा ने हम बच्चों को एक नंबर वन देवी देवता धर्म स्थापित करने के लिए यही आवाज लगाई है कि पुराना तन मन धन कखपन सब दे दो, नए विश्व का सुख शांति में सुख स्वराज्य ले लो। और जो वो लालटेन बाबा की जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी सर्व की, वो इस कलयुग के बाजार में जब गुम हो गई तो वो आवाज जब मिल गई तो ये सौदा बड़ा सस्ता लगा। पुराना देने को तैयार हो गए, नया लेने के लिए तैयार बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे वो बच्चे मेरे बच्चे हैं जो पुराने का सौदा करते हैं, पुराना देते हैं और नया लेते हैं। हम सब ने सौदा यही किया है। कोई भी बाबा कहते हैं विकृत संकल्प जो पुराना है फौरन दे दो, उसकी जगह नया ले लो। कोई भी स्वभाव, कोई भी संस्कार, कोई भी वृत्ति, कोई भी दृष्टि, किसी प्रकार का भी आपके पास पुरानापन आ जाए, उसे देकर यही एक सुअवसर है कि पुराने को देकर नया आप ले सकते हो। क्योंकि आज का हमारा विषय ही है राइट हैंड, उसकी निशानियां क्या हैं या राइट हैंड बने कैसे। वास्तव में मैं तो थोड़े में ही इसका अर्थ बताना चाहूंगी कि बाबा की जो रही हुई सेवाएं हैं उसे जल्दी से जल्दी संपूर्ण कर संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करने वाले ही बाबा के राइट हैंड हैं, जिन्होंने इस बात को लक्ष्य बना लिया कि अब जो भी सेवाएं रही हैं वो सेवाएं मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रखते हुए मुझे उन सेवाओं को सुचारू रूप से संपन्न करते हुए अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है और शीघ्र अति शीघ्र करनी है। पता नहीं समय किस रूप से चला जाएगा। और बाबा ने हम बच्चों को ये कह दिया है कि बच्चे तेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। तू संपन्न करना चाहता है बाबा के बचे हुए कार्य को, तू ज्यादा नहीं सोच, केवल अपना ही सोच ले कि तेरा परिवर्तन अगर शीघ्र अति शीघ्र आ जाएगा तो सारे विश्व का परिवर्तन तेरे परिवर्तन से बंधा हुआ है, ऐसा समझ अपने परिवर्तन पर इतना अटेंशन देकर चलो। क्योंकि मैं अभी स्वयं नहीं हूं, मेरे साथ सारा संसार है। आज समय भी ऐसा आ चुका है, एक न्यूज आज इंडिया में है और सारे विश्व भर में उस न्यूज को जाने में एक मिनट नहीं लगता, सेकंड्स में वो न्यूज कहां से कहां जा चुका है और विश्व न्यूज बन चुका है। तो बाबा भी कहते हैं मेरा भी एक एक बच्चा हद में नहीं है, बेहद है। अब हम स्वयं को स्वयं देखें कि मुझे अगर बाबा का राइट हैंड बनकर रहना है तो मुझे स्वयं के परिवर्तन में कितनी तीव्रता चाहिए। स्वयं के परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? जो हमारे देह अभिमान के बने हुए स्वभाव हैं या देह के अभिमान पर आधारित संस्कार हैं, उन स्वभावों और संस्कारों को बदलना और जो नव विश्व के नए संस्कार और स्वभाव हैं उनको धारण करना, ये छोड़ना है और ये पकड़ना है। कई बार छोड़ने का हम ख्याल रखते हैं और पकड़ने की तरफ ध्यान ना देने के कारण छूटी हुई चीज को पुनः पुनः पकड़ लेते हैं। कहीं भी गहरा घाव किया जाता है
तो डॉक्टर यहां से मांस दूसरी जगह से थोड़ा उतार कर पतला पतला इसके अंदर भर देते हैं, जगह गैप नहीं रखते हैं, जख्म खराब हो जाएगा। हमको भी हमारे बाबा ने कहा है ये चीज छोड़नी है लेकिन ये पकड़नी, छोड़ना और पकड़ना दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। मुझे क्रोध छोड़ना है लेकिन प्रेम और शांति पकड़नी। और अगर आपने क्रोध तो छोड़ दिया, प्रेम और शांति को पकड़ कर नहीं रखा, उसकी जगह उसे भरी नहीं, तो थोड़े समय के बाद पुनः क्रोध आएगा और फिर आपको ही अपने पुरुषार्थ में थकावट महसूस होगी कि मैंने कई बार कहा मैं क्रोध नहीं करूंगी, आवेश नहीं करूंगा, लेकिन बार बार आ जाता है। और कारण यही है कि हम आधा काम करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। दूसरी बात बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जन्म जन्म के किए हुए पापों को नाश करना है, ख्याल रखना, और 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ संस्कारों का, कर्मों का खाता जमा करना है। अब नाश करना है हमको ख्याल है, योग लगा रहे हैं, लेकिन जमा भी करना है, उसके लिए ज्ञान का, उसके लिए स्वयं की स्थिति का, सेवा का कितना टेंशन चाहिए। खाली खत्म करने के लिए योग लगाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं कितने भी कर्म है, 25 साल 24 साल 30 साल से योग लगा रहे हैं, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे। ना खत्म होने का कारण यही होता है कि ये खत्म करने हैं, ये भरने हैं, और वो भरने की कमी होने के कारण जिनको हम समझते हैं हम खत्म कर रहे हैं, वो खत्म नहीं होते, वो किसी दूसरा रूप लेकर के हमारे कर्मों में आ जाते हैं और फिर हमसे भी कर्म करा लेते हैं। ठीक बाबा हम बच्चों को हर बात स्पष्ट करता है कि बच्चे ये वो समय है जो अपने हिसाब किताब जो आपने जोड़े हैं, जिनसे भी आपने खाते कर्मों के जोड़े हुए हैं, वो जोड़े हुए कर्मों के खाते वर्तमान समय चुकतु करने, लेकिन ख्याल रखना कहीं नया खाता जोड़ ना लेना। केवल ये हमें तोड़ने हैं और नई दुनिया के साथ श्रेष्ठ खाते ही जोड़ने हैं। कई बार इधर से तोड़ते हैं, इधर जोड़ लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं लोहे की रस्सियां तो तोड़ दी लेकिन सोने के रस्से बनाकर बैठ गए। तोड़ा क्या है, जोड़ भी तो लिया है। फिर हम कहते हैं पता नहीं हम बाबा के राइट हैंड हैं या नहीं हैं। क्यों, मुझे मेरा स्वयं का पता नहीं, ये कैसे हो सकता है। जरूर है मुझे स्वयं का पूरा पता नहीं, इसका मतलब मेरे पास अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, स्पष्ट समझ नहीं है कि मुझे हटाना क्या है और मुझे बसाना क्या है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं ख्याल रखना, आप बच्चों को इस समय अपने विकर्मी संस्कार खत्म करके दैवी गुणों का खजाना भी जमा करना है। आश्रित संस्कार खत्म कर रहे हैं, दैवी गुणों का खजाना कितना जमा हो रहा है, और वो भी जन्म जन्म का है जो खत्म करना है, ये भी जन्म जन्म का है जो जमा करना है। और बाबा कहते जल्दी करो, और हम सबको मालूम है कि जब हमको वापिस जाना है तो हमको फरिश्ते बन के जाना है। अब फरिश्ते का मतलब है जिसे चिंता है, निराशा है, उदासी है, हताशपना है, ये सब चीजें ये वास्तव में मेरे रास्ते की बाधक है, मुझे बोझिल बनाएंगी। क्योंकि फरिश्ते का मतलब जिसके ज्ञान और योग के ऐसे पंख लग गए क्या वो उड़ान भर सकता है। लेकिन अगर कोई चिंता लगी है, कोई भय अंदर से है, किसी बात का मुझे हर समय डर लगा रहता है, शंका लगी रहती है, संदेह होता रहता है, वो चीजें मुझे बोझिल बना के रखेंगी, मुझे उड़ने नहीं देंगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। और तीव्र पुरुषार्थ को हम कह सकते हैं कि इस समय के अनुसार जो हमारी तीव्रता है वो एक रेस स्पिरिट के अनुकूल होनी चाहिए। रेस स्पिरिट का मतलब क्या, आप में से सब जानते भी हैं लेकिन मैं कभी स्पष्ट कर देती हूं ताकि हर एक को पता रहे। क्योंकि कैसे रेस में जब 5 बच्चे खड़े हैं और रेफरी विसल मुख में रख के खड़ा है, खाली उसको एक रेफरी ने एक विसल बजानी और सबने भाग उठना है, आप जरा देखिए उस रेस में खड़े कैसे, सब ऐसे खड़े। अभी रेफरी ने मुख में विसल डाली और भाग उठते हैं, वापस आओ कहां जा रहे हो, विसल होते ही जाना है। और बाबा कहते हैं सेकंड में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन के ज्यादा समय नहीं चाहिए, होगा भी सेकंड में, लास्ट पेपर सेकंड का पेपर ही आएगा। अब हम अपने आप को देखें, हम इतने तैयार हैं कि बस विसल हुई और हम वो गए, उसके लिए अटेंशन क्या रखना है, ना पीछे देखे ना दाएं देखे ना बाएं देखे, लेकिन लक्ष्य जरूर देखे, वो है लक्ष्य जिस तक मुझे पहुंचना। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही है, राइट हैंड बनने का मतलब ही है कि मुझे हर समय मेरा लक्ष्य क्लियर सामने दिखाई देता है, ये है मेरा लक्ष्य, और लक्ष्य के अनुकूल मेरे लक्षण हैं, ये अपने आप से जरा पूछते रहें। लक्ष्य और लक्षण में गैप कितना रह गया है, क्या ये गैप जो लक्ष्य के अनुकूल मेरे लक्षणों में है, जिस स्पीड से मैं बढ़ रहा हूं पुरुषार्थ में चल रहे हैं, क्या इस स्पीड से चलने पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा हमारा ना केवल टीचर है लेकिन साथ ही साथ एग्जामिनर भी है, और एग्जामिनर के साथ साथ हमारा गाइड भी है, हमें गाइड भी करता है, वो हमें बता देता है कि कैसे तुम अपने लक्ष्य तक नजदीक पहुंच सकते हो। जिस पर गाइड ने हमको गाइडेंस दी हुई है, अगर कोई भूल छोटी हो या बड़ी हो, एक बार अगर कोई भूल हो जाए, उस भूल से इस कदर लेसन ले लो कि भूल कभी रिवाइज नहीं हो सकती, दोबारा वो भूल नहीं हो सकती। अगर एक भूल को बार बार करते जाओगे, कभी भी स्पीड में बढ़ोगे नहीं, मंजिल तक पहुंचोगे नहीं, लक्ष्य और लक्षण में सदा दूरी बनी रहेगी। अगर लक्ष्य लक्षण को समान बनाना चाहते हो, एक भूल हुई लेकिन फुल स्टॉप लगा दो, आगे से नहीं हो सकती। ये कैसे नहीं हो सकती, उसके लिए अपने मन में दृढ़ता आ जाए। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ज्ञान में, तो बड़े हो जाने पर हमें औरों से शिक्षा लेनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अनेकों को शिक्षा देने वाले बन चुके होते हैं। और अगर कोई शिक्षा देता भी है तो हम फौरन उन्हें कह देते हैं, आप भी वाणी पढ़ते हो, हम भी वाणी पढ़ते हैं, हमें भी सब मालूम है बाबा क्या कहता है। नहीं दे सकता है कोई किसी को। और मैं जैसे कल बता रही थी कि हम अपना रास्ता ब्लॉक भी ना कर दें, कि हमारे बड़े भी हमको उंगली ना दे सके कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसी भी स्थिति हमारी ना कभी आ जाए। लेकिन एक भूल अगर हो गई, दोबारा भूल हुई और हम कह देते हैं सॉरी, सॉरी कह देने से क्या हो जाएगा, फिर तीसरी बार होएगा सॉरी सॉरी अब नहीं करेंगे सॉरी, ये तो फैशन, नया फैशन है, ये ब्राह्मणों का फैशन नहीं है सॉरी। साकार बाबा का एक एग्जाम्पल मैं बीच में दे देती हूँ। साकार बाबा हम बच्चों को एक बार अपनी बात सुना रहे थे, तो बाबा का ये सुनाना था कि अगर कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए जो पुनः भूल ना हो सके। तो बाबा ने अपना लौकिक जीवन का एक एग्जाम्पल दिया कि एक बार बाबा ने कहा लौकिक घर में सास आई थी और सास ने जो ही आई तो मैंने अपनी लौकिक पत्नी, उस समय जो पत्नी थी, बाबा ने कहा यशोदा को मैंने कहा कि तुम्हारी स्टेप मदर सौतेली माँ आई है, क्योंकि सौतेली थी उनकी। अब मैंने ये जो शब्द कह दिया, इतना अंदर से मुझे दुख हुआ कि जिस माँ ने अपनी बच्ची को पाला पोसा और इतना बड़ा किया और इतने स्नेह प्यार से मुझे भी सत्कार देती है, और मैंने आज हंसी हंसी में कह दिया तुम्हारी स्टेप मदर आई, अगर इसने सुन लिया हो तो इसके अंदर क्या बीतेगी। और बाबा को यही लगा कि उसने जरूर सुन लिया, लेकिन दामाद के सामने पहले वो बोलते नहीं थे, बोला नहीं, लेकिन उसको कितना बुरा लगा होगा। बाबा ने ये नहीं कहा जाके उसके चरण स्पर्श करो या माफी मांग लो, ये नहीं किया, वो चली गई। बाबा ने अपनी पत्नी को कहा शाम को कि आज बग्गी तैयार कर रहा हूं और आज अम्मी के घर चलेंगे, सास का अम्मी कहते थे। तो यशोदा माता ने कहा क्यों, आज ही तो अम्मी होकर गई है, आज अम्मी के घर क्यों जाना है। कहा नहीं, आज कुछ काम है, आज जाना है। और दामाद घर में आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, अचानक आ जाए तो बेटी भी दामाद भी दोनों आ गए तो बेचारी बहुत खुश हो गई, मेरा क्योंकि बड़ा आदमी था ये, मेरा दामाद घर में आया है। और बाबा घर में गया, अंदर जाके ऐसे बैठा है, बैठ के टटोलता है, वहां एक पतीला था इतना बड़ा, उस पतीले के अंदर पापड़ बनाने के लिए आटा पड़ा हुआ था। और बाबा ने उस पतीले को पकड़ा और कहा अम्मी आज ये सारे पापड़ मैं बनाऊंगा। कहा क्या बात करते हो। कहा नहीं, आज मैं पापड़ बनाकर ही जाऊंगा। आप सोचिए जिसने कभी पापड़ इतना ना बनाया कितना टाइम लगेगा इतना आटे के पापड़ बनाने में, और वो तो सास तो कुर्बान जा रही है अपने दामाद पर कि किसी का दामाद हो तो ऐसा हो, मेरा कितना अच्छा दामाद, सबको बता रही है मेरा दामाद क्या कहने, आज आकर कितनी सेवा की। मैं खाली लंबी नहीं बात करती हूँ, मेरा भाव सुनाने का क्या, बाबा ने क्या हमको समझाना चाहा कि अगर कोई भूल किसी को कुछ कष्ट देने की हो भी गई, इतना सुख दो उसको, इतना सुख दो कि उसको आपका दिया कष्ट तो भूल जाए, लेकिन आपके सुख का वर्णन वो 10 आत्माओं को करे कि सुख देखना हो लेना हो तो इस प्राणी से लो। ये है सॉरी करना। बाकी लग गया किसी का पांव, दब गया आपके पांव के नीचे, सॉरी, वो बेचारा डॉक्टर पास जा रहे, आप सॉरी करके आगे चले गए, लगा धक्का सॉरी चल, वो तुम अपना कमर पकड़ के बैठा रहे वो तो सॉरी करके चले गए हैं। ये सॉरी की चीज नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं, हमारी संस्कृति नहीं है, आध्यात्मिक संस्कृति कहती है अगर कोई भूल हो गई है तो खाली ये ना कहो भूल आगे से नहीं होगी, इतना श्रेष्ठ कार्य करो, इतने श्रेष्ठ कार्य करो जो आपकी भूल किसी के नजर में ना आए और विस्मृति हो जाए कि इसने कभी भूल भी की होगी, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, तब हम अपनी भूल का क्षमा करा सकते हैं। नहीं तो वर्तमान समय की एक भूल कितने गुना दंड की भागी बनाती है और एक श्रेष्ठ कर्म कितने गुना फल का भागी बना देता है। लेकिन साधारण सी भूल अगर हो भी गई उसके लिए भी क्या करें, भारी भूल की तो मैं बात नहीं कह रही। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा अगर तीव्र पुरुषार्थ कर राइट हैंड बनना चाहते हो तो जो एक बार भूल हो जाए उस भूल को दोबारा ना हो। मान लीजिए किसी का नेचर है कि कोई बात अगर उनके अयोग्य कही गई जो उनके अनुकूल ठीक नहीं है और कह दी तो बोलते तो नहीं है, लेकिन फीलिंग इतनी आती है कि 4 दिन तक वो किसी से बातचीत नहीं करते, मूड ऑफ ऑफ घूमते हैं, कोई पूछे भी क्या बात है कहते कुछ नहीं, मूड ऑफ, कहते जी मेरी नेचर है, जल्दी से फील कर जाना, जल्दी से मुख बना लेना, जल्दी से चिंतन चलना शुरू हो जाना। मान लीजिए जिसमें जो भी संस्कार है, जो भी आदत है, अगर वो छोटी छोटी आदतें हम ये कहकर चला दें कि भी ये हमारी नेचर है, तो ये नेचर अगर हमारी बनी रहेगी तो हम अपने जीवन के परिवर्तन के लिए कितना समय चाहते हैं। अगर मेरी नेचर है कहकर हमने किसी कमी को मजबूत बना के रखा, तो उस कमी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अगर इस प्रकार की कई कमियां हो जाएं, तो कोई 300-400 वर्ष तो हमें पुरुषार्थ के मिले नहीं। जब इतना लंबा समय लगाकर अपने को अपनी भूलों से क्षमा कराकर आगे बढ़ सकेंगे, समय तो थोड़ा है। और बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं, बताओ ये सब संस्कार ले जाना चाहते हो साथ? और कभी हम स्वयं स्वयं से पूछे, कई संस्कार हैं, स्वभाव हैं, हम सब में हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता नहीं है। अगर नहीं हो कोई भी तो हम इस दुनिया में जो कमियों का दुनिया है उसमें नहीं रह सकते, परफेक्शन की दुनिया में जा चुके होते। हम अभी यहां हैं, हमें कुछ मार्जिन है अभी पुरुषार्थ के, कुछ हमारे में कमी कमजोरियां रह गई हैं, कुछ जमा करना रह गया, कुछ नहीं करना घटाना रह गया, इसलिए हम यहां बैठे हैं। अगर हम ये समझते हैं कि कमियां साथ जाने वाली नहीं है, आप सोचो आज किसी देश से विदेश में जाना हो तो आपके डॉक्यूमेंट सब क्लियर होने चाहिए, आपका वीजा ठीक होना चाहिए, आपका पासपोर्ट ठीक होना चाहिए, आपके पास कोई ड्रग्स आदि नहीं होनी चाहिए, कोई बैन की हुई चीजें जो है जो उस देश में नहीं ले जा सकते आपके पास वो नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है आपको वापस भी भेजा जा सकता है। तो हम बच्चे तो कहां जा रहे हैं, नई सत्युगी पवित्र श्रेष्ठ सृष्टि में क्या कोई कमी और कमजोरी हम में रह जाएगी? क्या हम वहां प्रवेश करने के योग्य होंगे? मान लीजिए किसी में कोई आदत है, कोई स्वभाव है, और वो स्वभाव उसका औरों को भी असर डाल सकता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज है, छूत की बीमारी है। हमारे भारत देश में बीच में कुछ समय हुआ प्लेग की बीमारी आई, और जब प्लेग की बीमारी आई विदेशों में जाने जहाज बंद हो गए थे, और जिन देशों में फर्स्ट फ्लाइट चली गई निकल गए, लेकिन सेकंड फ्लाइट जो गई थी, मुझे मालूम है उस समय रूस देश का, कि जब सेकंड फ्लाइट वहां पर गई तो लोगों को शहर में नहीं घुसने दिया, उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर गए और 8 दिन उनको हॉस्पिटल में ही रखा। और जो लास्ट फ्लाइट गई उस फ्लाइट में अचानक हमारे यहां से डॉक्टर गिरीश और अस्पी भाई 2 गए थे, उसी समय डॉक्टर्स वहीं खड़े थे, उनके फ्लाइट से उतरते ही उनको उन्होंने लिया और अपने वहीं एयरपोर्ट पर जो हॉस्पिटल है उसमें ले गए, और 2 डॉक्टर्स घर में 24 आवर्स के लिए आ गए कि ये हर समय यहां बैठेंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट थी, अभी उनका लॉ पास नहीं कुछ हुआ था, और ये सारा टाइम हर आधे घंटे के बाद आपका टेम्परेचर लेते रहेंगे कि कहीं किसी प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज लेकर ये हमारे देश में तो नहीं आ गए। और इस प्रकार कईयों का टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा हाई रहता है, तो हमको याद है गिरीश भाई का उसमें थोड़ा हाई रहता था, अस्पी भाई कहता था एस्प्रिन एस्प्रिन कुछ खा लो भैया, हॉस्पिटल ले जाएंगे तुझे। मानो इस प्रकार का नहीं जाने देते हैं। हम देखें हम कहां जा रहे हैं, और हम अपना इतना टेंशन कहते क्या है, हर एक में कौन संपन्न बना है, ऐसा कहकर अगर हम अपनी कमजोरियों को संभाले रखेंगे और कमजोर बने रहेंगे, आप सोच सकते हैं राइट हैंड बाबा के बन बाबा का कार्य संपन्न कैसे होगा, और हम उस नई सृष्टि के अधिकारी कैसे बन सकते। हम कई बार देखते हैं किसी को जितनी छोटी सी बात पर उत्तेजना आ जाए, बड़ा जोश आ जाए, फिर कहो कहा मालूम है ना आपको, मुझे आ जाता है जोश। लेकिन कितने दिन तक ये मालूम करना है कि आ जाता है? कोई लिमिट, कोई टारगेट, कोई दिन निश्चित? कोई नहीं। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है? हर समय उसको अपने ऊपर निगरानी। क्योंकि मैं इसलिए आपस में मैं बात कर रही हूं, जैसे आप समर्पित हो ऐसे हम समर्पित हैं, क्योंकि हम समर्पित वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमको देखने वाले बहुत हैं। और अगर हम अपनी कोई भी कमी और कमजोरी हम ये कहते फलां के कारण है, कारण कोई भी है लेकिन प्रकट किससे हो रहा है? प्रकट तो मेरे से बीमारी हो रही है, मुझे इन्फेक्शन इनसे आया, उनसे आया या उनसे आया, रोगी कौन है? इस समय का रोग फैलाने वाला, रोग का भोगी कौन है? तो मैं हूं ना। इसलिए इस समय अगर हम तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी बातों को भी चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई ध्यान खिंचवाता भी है कि देखो ये ऐसी है, हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? हमारा इम्प्रेशन बिगड़ता है। इम्प्रेशन तो ऑलरेडी बिगड़ गया। जब आपकी कमी किसी दूसरे ने नोट की और नोट करने पर आपको इशारा भी दिया गया कि ये आपकी कमी हमको ही नहीं लेकिन औरों को भी अखड़ती है, ये ठीक नहीं है, और आप सिद्ध करते हो कि नहीं ऐसी कमी मेरे में कोई नहीं, आपको ऐसा ही लगता है, कमी किस में नहीं होती है, आप ऐसा कहकर अपना इम्प्रेशन बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इम्प्रेशन तो डबल कमी आ गई, एक तो कमी है, दूसरा कमी को स्वीकार ना कर अपने इम्प्रेशन का ख्याल रखना, उससे डबल इम्प्रेशन खराब हो जाता है। और सोचो सुधार कैसे होगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये परिवार है, और परिवार में क्यों रहना जरूरी है? कई कहते हैं हम सबके साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते, हम तो अकेले अकेले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अकेले पुरुषार्थ से कोई देवता नहीं बन सकता। अगर देवता बनना है तो संगठित परिवार चाहिए। क्यों नहीं देवता बनना चाहते संगठन में? क्यों नहीं? क्योंकि ना कोई मेरी कमी देखे, ना कोई मेरी तरफ उंगली करे, ना मैं किसी को देखूं, ना मैं उसके प्रभाव में आऊं। बाबा कहते तुम वो सन्यासी थोड़ी हो जो जंगल में रहने वाले। लेकिन अगर मुझे मेरी कोई कमी स्वयं को नहीं लगती है और अगर किसी का मेरी तरफ ध्यान खिंचवाने का काम चल रहा है तो मैं कभी ये ना कहूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं हो सकता है। हो सकता है कमी है तो स्वीकार कर ले, अच्छा धन्यवाद, ध्यान देंगे। नहीं है तो ये कह दें ऐसा लगता नहीं लेकिन फिर भी चेक करेंगे, अगर होगा तो ध्यान देके ठीक करेंगे। पारिवारिक संगठन से हमें सहयोग मिलता है, नहीं तो हम स्वयं को सर्टिफिकेट देकर चलते हैं, हम ठीक है, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किसने आपको कहा कि आप अच्छा चल रहे हो? क्या मैं स्वयं से संतुष्ट, सब मेरे से संतुष्ट, या मैं सबको संतुष्ट कर चल पा रहा हूं? कहते संतुष्ट कौन किससे होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है 100% नहीं, बाबा ने एक बार कहा था दादियों को, चलो 95% इसे 5% ढीला छोड़ दो, लेकिन संतुष्ट रह, संतुष्ट करना है। कोई कहते मैं संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करता लेकिन कोई संतुष्ट रहे ही ना तो क्या करे? कोई बात नहीं, ये उनकी नेचर है, वो नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ से जो प्रयत्न होना चाहिए, जो आपसे दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसा ना कर ऐसा करो, मैं वो वैसा ही करूं, वो नहीं संतुष्ट होते तो उनकी बात है, लेकिन मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं स्वयं संतुष्ट हूं। और स्वयं दूसरों को संतुष्ट करने का सदा प्रयत्नशील है, इस बात का हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम कभी ये न समझे हमारा इम्प्रेशन पड़ जाएगा, कोई क्या कहेगा। आज हम देखते हैं कई बार माताएं हमारी कहती हैं, दीदी स्वयं कुछ भी बोलते रहें करते रहें, हमने एक शब्द भी जरा बोल देते हैं तो फौरन हमें कहते हैं यही तुमने सेंटर वालों ने आपको सिखाया है। हमको अंदर से बहुत आता है तुमने तो 10 बातें बोली, मैंने तो एक ही बोली। हमने कहा सोचो आपसे वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कितनी ऊंची निगाह है उनकी आपके प्रति, कि 10 बोलने वाले हम तो इंसान हैं, लेकिन ये तो ज्ञान सीख कर आकर भगवान के कहलाते हैं, इन्होंने एक भी शब्द क्यों बोला। तो बड़े आदमी का एक बोल भी अखड़ता है, छोटा आदमी 10 बोलता जाए तो कोई असर नहीं। आप बड़े हो, महान हो, उनकी निगाहों में आप साधारण नहीं हो, आप कॉमन नहीं हो जैसे आम पब्लिक है, इसलिए वो आपको कहते हैं आपने ऐसा क्यों बोला। आप फौरन ये स्वीकार करो, ठीक है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, राइट नहीं बोला है। हम राइट हैंड बनने के लिए बाबा के मुझे स्वयं स्वयं को देखना है, हर समय लक्ष्य सामने हो, सचमुच मेरा पुरुषार्थ मेरे लक्ष्य की तरफ जा रहा है, ये मिला ये नहीं मिला, ये कम मिला, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ क्यों नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन त्याग का जीवन, त्याग तेरा भाग्य बनाएगा, भगवान तेरे साथ है, तेरे त्याग में भी तेरे भाग्य की वृद्धि दिनों दिन ज्यादा होती जाएगी। तो कभी ये ना सोच कोई चीज मेरे पास कम हुई तो शायद मेरा भाग्य ही कम हो गया, भगवान तेरे साथ रहेगा, तेरा भाग्य कम नहीं होने देगा, भरपूर करके तुझे रखेगा। जितना हो सके हमारा ईश्वर के प्रति जब संपूर्ण समर्पण भाव है तो मेरा सर्वस्व शक्तियां हैं, गुण है, मन बुद्धि है, स्थूल धन है, ये सब ज्यादा से ज्यादा बाबा की सेवा में जाए और कम से कम अपने ऊपर उसका प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं बहुत है तो खूब ऐश लूट ले, सब कुछ है तो सही, क्यों ना खा ले, क्यों ना पहन ले, क्यों ना घूम ले। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी माया है, ना होना अलग चीज है, होने पर अपने जीवन में त्यागमय जीवन जीना ये महान कार्य है। ये देखो कितनी त्याग की भावना है आप में। हमको याद है जगदीश भाई जब बीमार थे और हॉस्पिटल बॉम्बे जाना था तो मुझे कहा कि आपको मालूम है उन्होंने कितनी मेहनत की रात दिन, बहुत से उनको जानते हैं परिचित हैं, 200 बुक्स लिखी, कुछ सहज नहीं होता किताबें लिख देना, मेहनत करनी पड़ती है। और जब बीमार थे हॉस्पिटल जाना था तो सारे अपने कपड़े निकलवा के बैठे थे, पुराने नए सब। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं भाई सब, आप इतना कपड़ा निकलवा के क्यों बैठे। को देखो मुझे 4 या 5 वगे चाहिए, कुर्ते पजामे चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए, एक बास्केट होगी, 2 स्वेटर होगी, 1 शॉल होगी, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तबीयत खराब है, हॉस्पिटल भी जा रहा हूं। और अगर मान लीजिए, ऐसे ही उन्होंने कहा इशारे में मुझे, मान लीजिए कुछ हो भी जाएगा तो कल को मेरा ये सामान जब आप किसी को देंगे तो लोग कहेंगे मरे हुए के कपड़े मुझे दे रहे हैं, कई वहम भी कर सकते हैं। मैं ये सब सामान अपने हाथों से एज ए गिफ्ट सबको देकर जाना चाहता हूं। और सारा सामान अपना, कोई बहुत देर तो था भी नहीं, ना जाने कितने साल पहले के कपड़े सिलाए हुए थे, और टेरिकॉट का कपड़ा फटता तो है नहीं, वो तो कहीं जल ही जाए तो अलग बात है। और हम कई बार कहते थे अब थोड़ा काला काला रंग हो रहा है, तो कहते काला हो रहा है ना, मेरा रंग तो गोरा हो रहा है, कोई बात नहीं। मानो एक लक्ष्य होता था, हम कमाते नहीं, हम कुछ यज्ञ में कर नहीं सकते हैं। ये जो हमारी बचत है अपने ऊपर, ये जो हमारी यज्ञ में जाएगी, यही तो हमारा भाग्य बनाएगी। ये मेरा भाग्य है। तो हमेशा हम अपना ख्याल रखें इस चीज पर कि हमारा अपने ऊपर कम से कम लगे। ऐसा नहीं है, नहीं होता, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दाता का है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संकल्प ना आए मैंने तो ये किया, मैं ये करता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए। बाबा कहते हैं दाता से डिमांड रखना, कुछ भी रखना, और उसको भी कहने की जरूरत नहीं। आज्ञाकारी बच्चे के लिए बाप तो गुलाम बनकर उसका चलता है। और बाबा के ये शब्द थे, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू मेरा लायक पुत्र तो बन के दिखा, मैं तेरी हर समय सेवा पर तत्पर। तो इंसानों से कुछ चाहता है जिससे अपनी मनोस्थिति को खराब करके, जो ईश्वर के यज्ञ का शो करना चाहिए, तेरे श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव से उसमें कमी आ जाती। बच्चे तू मेरा है और मुझे शो करने वाला तू बालक है, इसलिए तेरे को मैं शो करूंगा, तू मुझको शो कर। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा के रहे हुए कामों को हम जल्दी से जल्दी स्पीड से चलकर संपन्न करें। छोटी छोटी बातों में समय को ना लेकर जाए, वेस्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कहते हम ठीक चलते हैं, लेकिन जब दूसरों का व्यवहार जो हमसे होना चाहिए, जब उस व्यवहार को वैसा नहीं देखते हैं, तो हमारी स्थिति में इफेक्ट आता है। ठीक है, आप इंसान है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी बाबा ने हमको कहा हुआ, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों से ऊपर उठकर फरिश्ते हो, देवता बनने जा रहे हैं। बाबा कई बार कहता है, लोगों को ये भी नहीं मालूम, मेरे बच्चों को तो ये, वो लोग हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम लोगों में नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते, उसके प्रभाव से ये हो जाता है। कितना अच्छा, वो कहीं कोई, मैं गई तो कुछ सुना रहा था, कहते हैं वो कहावत से सुना दो ये चुटकला या क्या है, भी प्रभाव में आ जाने से कि भी एक रामायण हो रही थी, तो रामायण में हनुमान जी बीमार हो गए, तो किसी ने कहा भी हनुमान जी ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि रामायण नहीं तो ठप हो जाएगी। तो एक इंसान को देखा, वो ढील ढोल में वैसा ही था, उनको हनुमान जी का रोल देना चाहा। उसने कहा मैं तो हनुमान जी क्या, मैं तो अपनी दुकान चलाता हूँ हलवाई की, मुझे तो ये कुछ आता नहीं। का करना कुछ नहीं है, खाली तुमको रावण की सभा में जाना है और रावण जोर से बोलेगा कि तुम कौन हो, और तुमको यही कहना है मैं महाराजा राम जी का अनुचर हूँ। बस का ये तो मैं कह दूंगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और तैयार हो गया और 10 दिन बेचारा मैं रामचंद्र जी का अनुचर हूँ, मैं रामचंद्र जी का अनुचर हूँ, रटता रहा। आकर मंच पर गया तो रावण ने गर्ज कर कहा तू कौन है, तो बेचारा घबरा गया, कहता है मैं हलवाई रामचंद्र हूँ। अरे तू हलवाई रामचंद्र कहाँ से आया, तू तो हनुमान था। तो सारे लोगों ने तालियां बजा दी कि ये देखो इतना रटा इसने। और जब उस रावण ने गर्ज कर बोला तो फिर वही का वही बोल पड़ा कि मैं तो हलवाई रामचंद्र हूँ, हलवाई थोड़ी हनुमान था। ठीक ऐसे ही हम भी ये चुटकुला अपने ऊपर देखे लगा के, हम अपने ऊपर भी हंसी करें कभी कभी, स्वयं पर भी हंसी आती है कि हमको भी कभी कोई ऐसा शब्द बोल देता है जो बोलना नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा व्यवहार कर देता है जो करना नहीं चाहिए। उस समय हमारा जो स्वभाव और बोल है, क्या वो ईश्वरीय है जो हमें बाबा ने रटाया है, तेरा ड्रामा में ये पार्ट है, तुझे इस ड्रामा में ऐसे बोलना है। हम भी भूल जाते हैं और भूल कर हम कहते हैं अच्छा आपको बोलना आता है तो हमें नहीं आता क्या, चलो बोलो क्या कहते हो, अरे कहाँ गए वो सब बातें। क्या था रोल आपका, अपना रोल याद नहीं रहा। तो हम सारा दिन कितना अपना रोल भूल जाते हैं। कहना सरल है कि सृष्टि ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, रियली हम एक्टर हैं। मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी कर रही हूँ, घड़ी भाग रही है बहुत तेजी से। और बाबा की एक बात मैं और जरूर सुनाना चाहती हूँ कि राइट हैंड माना क्या है, कि हम अपने पुरुषार्थ में इतनी तीव्रता लाएं। जैसे आज दादी जी पूछ रही थी कि आप क्या समझते हो समय कैसा है। बाबा ने हमको एक मुरली में बहुत सुंदर बताया कि बच्चे समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। भूचाल आएगा, फ्लड आएगा, आग लगेगी, अकाल पड़ेगा, सब कुछ इकट्ठा ही होगा। बोलो उस समय अपना बचाव कैसे करोगे। ठीक है, जब बीच में कुछ समय हुआ चाइना और इंडिया का या पाकिस्तान इंडिया का बीच बीच में झगड़ा हुआ था, तो हमको याद है उस समय बसेस, टैक्सीज और जीप्स मोहल्ले मोहल्ले में आती थी और रेडियो में न्यूज आता था कि अगर थोड़ी भी बम्बार्टमेंट शुरू हो जाए, अगर आप देखो ऐसे आकाश में कुछ बम का अंदेशा हो गया, सायरन बजेगा, तो आप सायरन बजते ही घर से नीचे उतर आना, अपनी सीढ़ी के कोने में खड़े हो जाना, घर के बाहर खड्डा खोद लेना, उस खड्डे में चले जाना, लकड़ी मोटी हो तो उसके टेबल के नीचे चले जाना, शीशे को कागज लगा देना ताकि टूटे तो आपको नुकसान ना हो। कई बातें थी जो लोगों को प्रकाशन के लिए बताई गई, हम भी सुनते थे। मुझे याद है जब सायरन बजता था तो गुलजार दादी सबको छोटा छोटा वो देती थी, कान में डाल लो रुई, और वो रात को देते थे, कहीं वो तकिए के साथ लग जाती थी। जब वो सायरन बजता था तो सब कहते दादी रुई तो पता नहीं कहाँ चली गई, रुई पता नहीं कहाँ चली गई। अब वो रुई लेके बैठे हुए क्या, चलो वो तो रुई डाल लो या नीचे चले जाओ या खड्डा खोद लो। जब पांचों तत्व भगवानों वाच्य हैं, इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे, तब किस खड्डे में जाएंगे, तब कौन से कॉर्नर में खड़े होंगे, किस शीशे को कागज लगाओगे। तो बाबा ने उसका हमें उपाय बताया हुआ है। बाबा जो भी बात कहता है इतना सुंदर उसका उपाय बताता है, डराता नहीं है लेकिन उसका तरीका बताता है बचने का साधन क्या है। तो बाबा के महावाक्य आप एक बार पढ़कर स्वयं देख लेना, बाबा ने बहुत सुंदर कहा था, बच्चे प्रकृति को जीतने वाले बच्चे, जो प्रकृति जीत बच्चा होगा, प्रकृति के पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे लेकिन प्रकृति जीत बच्चे को वो टच भी नहीं कर पाएंगे। तुम कुछ नहीं करो, तुम्हें केवल अपनी इस देह रूपी प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी, एक एक कर्म इंद्री पर विजय प्राप्त करनी। जो बोलना है वही बोलो, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोल सकते, जो देखना है जिसे देखना है वही देखो, जो नहीं देखने का है जिसे देखना बैन है उसको देखते भी नहीं देखो, जो सुनना है वो सुनो, जो ना सुनने की बात है वो ना सुनो, उस पर अटेंशन ना दो, विचरण ना करो। एक एक कर्म इंद्री पर बच्चे विजय प्राप्त करो। तो केवल अपने कर्म इंद्रियों को गुलाम बना ले, अगर तू इनका विजेता बन जाएगा पांचों तत्व तुझे कभी भी नुकसान नहीं दे सकेंगे। अब कोई सोच सकता है कि भाई बाढ़ आएगी तो बाढ़ थोड़ी देखेगी ये विजेता है यहां पर, उसको डुबोना छोड़ के बाकी को डुबो देगी, होगा। ये भी बाबा ने बड़ा सुंदर बताया हुआ है कि मान लीजिए तेज बाढ़ का रुख आ रहा है, और कई बार आप वर्तमान समय भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बाढ़ शुरू हो गई है और ये गांव खाली कर दिए जाएं, अचानक उस बाढ़ का रुख बदल जाता है, वो गांव नहीं बहते लेकिन दूसरी तरफ के गांव बह के चले जाते। तो बाबा ने कहा था प्रकृति जीत बच्चों को प्रकृति भी चंवर झुलाएगी, प्रकृति जीत बच्चों को प्रकृति कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। जहां उसको जीतने वाले हैं वहां वो उसके नमस्कार करेगी। और हमारे तो भारतीय संस्कृति में जो आज कुछ धार्मिक पुस्तकें बनी हुई हैं उसमें कई एग्जाम्पल हैं जिनसे हम उस भाव को समझ सकते हैं, दुनिया नहीं समझती है। अब एक भाव आता है, श्री कृष्ण जब जेल में जन्मे तो उनका पिता टोकरे में उसको डाल करके जब जमुना पार करके छोड़ने जा रहे थे तो जमुना का पानी बहुत तेजी से चढ़ आया, यहाँ तक कि पिता के गर्दन तक पानी आ गया, गर्दन से ऊपर चढ़ रहा था। अचानक उस टोकरे से बच्चे ने टांगे बाहर निकाली, जमुना ने उनके चरण स्पर्श किए और जमुना का पानी नीचे चला गया। वो केवल प्रकृति जीत के चरण स्पर्श करने के लिए आ रही थी, वो डुबोने के लिए नहीं आ रही। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जहाँ मेरे प्रकृति जीत बच्चे होंगे, प्रकृति केवल स्पर्श करके उनका चली जाएगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बच्चे तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं करना, कौन है जो प्रकृति को जीत सकता है? ये पांचों तत्वों को जीतना सरल नहीं है, लेकिन इस प्रकृति को तो जीतो। आप इतनी सी प्रकृति नहीं जीत पाते हो, कब से बाबा हमको कह रहा है। जैसे कल के वाणी में जो मैंने रिपीट भी किया था, बाबा ने कहा मैं तो निराकार हूँ, मेरा तो शरीर नहीं है, लेकिन तुम भी तो आत्मा हो जो शरीर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हो, तुम शरीर तो नहीं हो ना। हम अपने से पूछें, ये कितना समय हमको स्मृति रहती कि मैं शरीर नहीं हूँ। हमारे साकार बाबा ने अव्यक्त होने के पश्चात जब उनकी इतनी डायरियां निकली, डायरियों में कुछ नहीं था, मैं आत्मा हूँ, पुट्टू आत्मा है, नारायण आत्मा है, आत्मा नशा चढ़ गया कि ये सब आत्मा है, सब आत्मा है। और बाबा की जो स्थिति थी वो आत्मीयता के आधार से उन्हें ऐसा नहीं कि मुकाबले नहीं करने पड़े, अपोजिशन नहीं सहनी पड़ी, बीमारी नहीं देखनी पड़ी, अपने बच्चों की तरफ से अनेक प्रकार के कष्ट नहीं देखने पड़े, प्रकृति के कई प्रकोप नहीं देखने पड़े। बहुत कुछ बाबा के सामने आया, धन की तरफ से आया, समाज की तरफ से आया, राजनीति की तरफ से आया, बच्चों की तरफ से आया, बीमारियों के रूप से आया, लेकिन बाबा ने मुकाबला आराम से किया, क्योंकि प्रकृति जीत आत्मा थी, प्रकृति को नहीं ला सका कोई। प्रकृति उपद्र मचा रही है, लेकिन प्रकृति जीत साक्षी बनकर सीन देखता है, दृश्य देखता है, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। तो आज भी प्यारे बाबा का बहुत सुंदर था, आप सबको मालूम नहीं पिया और पीयू की बातें। जैसे आज ही बाबा ने कहा पीयू, एक है पिया एक है पीयू। पिया हम कहते थे ब्रह्मा बाबा को, पीयू कहते थे शिव बाबा। ये उस समय की बातें हैं जब शिव बाबा ने अभी ब्रह्मा बाबा को भी संपूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये सब कार्य जो हो रहा है इसके पीछे लक्ष्य क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कैसे शिव बाबा ने आकर के पिया को सारी बातें स्पष्ट की और कितना सुंदर वो दृश्य थे, तो वो तो कोई बैठे मैं बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। लेकिन भाव ये है कि इस समय हम बाबा का राइट हैंड बने, और राइट हैंड बनने वालों को ऐसा ना हो जाए कि प्रकृति का उपद्रव आए और हम भी प्रकृति के उपद्रव के शिकार बन जाए। फिर लोग कहेंगे आप तो कहते थे कि पांचों तत्व उपद्रव मचाएंगे, अभी आप क्यों शोर मचा रहे हो। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो हमको कहा था करना वो हमने किया नहीं, अब हम आप लोगों के साथ ही मिल गए, अच्छा तो नहीं लगेगा। और अभी समय है, अभी कहते क्या करें, कोई ऐसी बातें सुना देता है तो कान तो नहीं बंद हो जाएंगे, आखिर चेतन है, मन तो चलेगा ही, कुछ चीज देखते हैं तो बिना देखे रहेंगे कैसे। अभी अपने कर्म इंद्रियों का हम ये समाचार सुनाते जैसे कि हम बिल्कुल सत्य ही बता रहे हैं, जबकि यह असत्यता है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता है कि मैं आत्मा हूँ और इन कर्म इंद्रियों की राजा हूँ। और बाबा की ये आज्ञा है कि बच्चे कर्म इंद्रिय जीत हो, स्वामी को सेवक कभी कष्ट नहीं पहुंचाए। तू स्वामी बनकर रहे, सेवक तेरी आज्ञा मानेगा। अगर तू सेवक बनता है तो सेवक तेरा स्वामी बनकर तेरे पर अपनी हुकूमत जमाएगा। इसलिए ये समय है राइट हैंड बनकर बाबा के जो कर्तव्य रहे हुए हैं हम बच्चों को संपन्न बनने के, वो हम संपन्न बनकर शीघ्र अति शीघ्र उस समय को लाएं जिस समय के हम सब इंतजार कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं इंतजार ना करो, इंतजाम करो। इंतजाम किए बिना इंतजार करते रहोगे तो इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, संकल्प समय स्वास्थ्य वेस्ट चला जाता है। इसलिए हर चीज की बचत करते हुए अपने को श्रेष्ठ बनाने का यही समय। ओम शांति।
मेरे साथ है बाबा, मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है, इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्हें सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा